नमस्कार भारत, तारीख 28 फरवरी दिन मंगलवार, मैं हूँ वात्सल्य राय। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रक्षा बजट में भारी बढ़ोतरी की तैयारी में, बुनियादी ढांचे पर भी बढ़ेगा खर्च।
दिस बजट विल बी ए पब्लिक सेफ्टी एंड नेशनल सिक्योरिटी बजट।
साल 2002 के गुजरात दंगों के 15 साल बाद भी बरकरार है पीड़ितों का शिकवा।
कोई मदद नहीं मिली, मेरा पूरा घर लोट हो गया था। वहाँ पे नरोड़ा पाटिया में 40,000 रुपए का बस खाली चेक आया हुआ, बस ये मकान मिला ये है।
मूक बधिर लोगों के लिए भारत में पहली बार तैयार हो रही साइन लैंग्वेज डिक्शनरी पर सुनवाएंगे खास रिपोर्ट।
साइन लैंग्वेज इज अ नेचुरल लैंग्वेज ऑफ इट्स ओन, उसके अपने ग्रामर है, अपनी स्ट्रक्चर है, अपने रूल्स है, अपना वोकैबुलरी है।
खबरें होंगी और भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, दिलनवाज पाशा से। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रक्षा बजट में ऐतिहासिक बढ़ोतरी करने का वादा किया है। व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने बताया है कि ट्रंप साल 2018 के रक्षा बजट में 54 अरब डॉलर की बढ़ोतरी करना चाहते हैं। ये अमरीका के लगभग 600 अरब डॉलर के रक्षा खर्च में लगभग 10% का इजाफा होगा। इसके लिए संभवतः पर्यावरण सुरक्षा और विदेशों को मदद जैसे गैर सैन्य कार्यक्रमों के खर्च में कटौती की जाएगी। बीबीसी संवाददाता के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप सिर्फ बजट के लिए सुझाव दे सकते हैं। बजट खर्च को कांग्रेस की अनुमति मिलनी अनिवार्य है। ऐसे में अभी ट्रंप के प्रस्तावों को पूरा होने में समय लगेगा। इसी बीच अमेरिका के रक्षा विभाग ने चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट को खत्म करने की योजना तैयार कर राष्ट्रपति ट्रंप को सौंप दी है। ट्रंप ने रक्षा विभाग से इस्लामिक स्टेट के खात्मे के लिए रणनीति मांगी थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि बैक्टीरिया से निपटने के लिए नए एंटीबायोटिक विकसित करने की आपात जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी ने ऐसे 12 बैक्टीरिया की सूची प्रकाशित की है जिन पर मौजूदा दवाओं का असर कम हो रहा है। ये बैक्टीरिया लोगों के स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा बन रहे हैं। WHO का कहना है कि यदि इन्हें रोकने के लिए तुरंत एंटीबायोटिक नहीं बनाए गए तो मामूली बीमारियों से भी लोग मरने लगेंगे। WHO की डॉक्टर मैरी पॉल कीनी ने कहा, ये सूची वास्तव में समाज या जन स्वास्थ्य समुदाय का एक आपात स्वास्थ्य जरूरत के लिए शोध करने का आग्रह है। इसके लिए सरकारों और उद्योग जगत को साथ मिलकर काम करना होगा और इन बैक्टीरिया से निपटने के लिए नए हथियार विकसित करने होंगे। जर्मनी की चांसलर अंगेला मेर्कल ने तुर्की में जर्मन तुर्क पत्रकार को गिरफ्तार किए जाने को निराशाजनक कहा है। तुर्की के अधिकारियों का कहना है कि जर्मनी के डाइवेल्ट अखबार के लिए काम करने वाले डेनिस यूचेल चरमपंथियों का प्रोपेगेंडा कर रहे थे और सरकार को कमजोर कर रहे थे। उन्हें तुर्की के ऊर्जा मंत्री और राष्ट्रपति अर्दोगान के दामाद के हैक हुए ईमेल पर रिपोर्ट करने के बाद हिरासत में लिया गया। तुर्की में बीते साल हुए नाकाम तख्तापलट के बाद से दर्जनों पत्रकारों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अपोस्ट रिपोर्टों के मुताबिक अलकायदा के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक की उत्तरी सीरिया में एक अमरीकी ड्रोन हमले में मौत हो गई है। समूह से जुड़े सोशल मीडिया सूत्रों ने मारे गए नेता का नाम अब्दुल्लाह अब्दुल रहमान बताया है। ये अलकायदा के दूसरे नंबर के नेता थे। अमरीकी मीडिया ने रक्षा सूत्रों के हवाले से बताया है कि अमरीका ने इन्हें निशाना बनाकर हमला किया है। यदि उनकी मौत की पुष्टि हो जाती है तो ये अलकायदा के लिए बड़ा झटका होगा। अबू अल खैर अल मिस्री के नाम से जाने जाने वाले अब्दुल्ला अब्दुल रहमान दशकों से अलकायदा का संगठन संभाल रहे थे। सीरिया के सरकारी सैन्य बलों ने देश के उत्तरी इलाके में इस्लामिक स्टेट के कब्जे से बड़ा इलाका मुक्त कराया है। इस इलाके पर नजर रख रहे कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस्लामिक स्टेट ने अलबाब के आसपास के 20 गांवों को छोड़ दिया है और सरकारी सैन्य बलों ने यहां मोर्चेबंदी कर ली है। मिस्र के सबसे प्रखर सांसदों में से एक मोहम्मद अनवर अल सादात को संसद से निलंबित कर दिया गया है। वो सरकार को मानवाधिकार के मुद्दों पर घेरते रहे हैं। पिछले महीने उन्होंने संसद के स्पीकर की अपने और अपने दो सहयोगियों के लिए बख्तरबंद गाड़ियों पर $10,00,000 से अधिक खर्च करने को लेकर कड़ी आलोचना की थी। अनवर अल सादात पर अपने सहकर्मियों के फर्जी हस्ताक्षर करने और गुप्त सूचनाएं लीक करने के आरोप लगाए गए हैं। पूर्व राष्ट्रपति सादात के रिश्तेदार अनवर अल सादात ने इन आरोपों को नकार दिया है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल पर भी सुन रहे हैं लाइव। आज तारीख है 28 फरवरी। बरसों तक याद रह जाने वाली घटनाओं की वजह से कुछ तारीखें अनायास ही इतिहास के स्याह सफेद पन्ने खोल देती हैं। फरवरी महीने की आखिरी दो तारीखों के साथ भी ऐसा ही है। साल 2002 में गुजरात के गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस के साथ हादसा 27 फरवरी को हुआ था। उसके बाद गुजरात का बड़ा हिस्सा दंगों की आग में जल उठा था। ट्रेन हादसे और उन दंगों को 15 साल पूरे हो गए हैं। कार्यक्रम में हम आगे इस पर बात करेंगे, लेकिन खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश से जुड़ी खबर से। अमरीका को दोबारा महान बनाने के नारे के साथ चुनाव जीतने वाले ट्रंप अपने पहले बजट में रक्षा खर्च में करीब 10% की बढ़ोतरी करना चाहते हैं। उधर पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने कहा है कि ट्रंप की टीम और रूस के रिश्तों के बारे में अमरीका को जवाब मिलना चाहिए। मीडिया को लेकर ट्रंप की तलखी के बीच बुश ने लोकतंत्र के लिए मीडिया की आज़ादी को भी जरूरी बताया है। पूरे ब्यौरे के साथ दिलनवाज पाशा।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साल 2018 के अपने प्रस्तावित बजट में रक्षा खर्च में $54 अरब की बढ़ोतरी करना चाहते हैं। ये कुल रक्षा खर्च का लगभग 10% है। अमेरिका का सालाना रक्षा बजट करीब $600 अरब है और ये दुनिया में सबसे ज्यादा है। ट्रंप की बजट योजना में अन्य क्षेत्रों में बजट कटौती भी प्रस्तावित है। इसमें विदेशी सहायता और पर्यावरण पर होने वाला खर्च भी शामिल है। ट्रंप के मुताबिक बजट का फोकस सेना, सुरक्षा और आर्थिक विकास पर रहेगा। सोमवार को व्हाइट हाउस में गवर्नरों के साथ मुलाकात में ट्रंप ने कहा कि हम सीमित संसाधनों में अधिक काम करना चाहते हैं और सरकार को अधिक जवाबदेह बनाना चाहते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा,
This budget will be a public safety and national security budget, very much based on those two.
ये बजट जन सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा का बजट होगा। ये ज्यादातर इन दो ही चीजों पर निर्धारित होगा, लेकिन इसमें और भी बहुत सी चीजें होंगी और इसमें अमेरिका की कमजोर होती सेना को फिर से खड़ा करने के लिए ऐतिहासिक बढ़ोतरी होगी। ये एक यादगार घटना है और इस खतरनाक समय में ये दुनिया के लिए अमेरिकी ताकत, सुरक्षा और संकल्प का संदेश है। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप और मीडिया के बीच तल्ख हो रहे रिश्तों के समय में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने कहा है कि लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र प्रेस जरूरी है। बुश ने एनबीसी के टुडे प्रोग्राम को दिए साक्षात्कार में कहा कि सत्ताधारियों की जिम्मेदारी तय करने के लिए स्वतंत्र प्रेस की बेहद अहम जरूरत है। उन्होंने कहा,
I consider the media to be indispensable to democracy.
मैं लोकतंत्र के लिए मीडिया को बेहद जरूरी मानता हूं। मैं मानता हूं कि मेरे जैसे लोगों की जिम्मेदारी तय करने के लिए स्वतंत्र मीडिया जरूरी है। मेरे कहने का मतलब है कि सत्ता की लत लग सकती है और ये संक्षारक भी हो सकती है, और ये मीडिया के लिए जरूरी है कि वो सत्ता का दुरुपयोग करने वाले लोगों को जिम्मेदार ठहराएं। बुश ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के सहयोगियों और रूस की सरकार के बीच संबंधों को लेकर जो सवाल उठे हैं, उनके जवाब भी अमेरिका की जनता को मिलने चाहिए। ट्रंप पर रूस से प्रभावित होने के आरोप भी लगते रहे हैं, जिन्हें वो पूरी तरह नकारते रहे हैं।
कोई पूर्व राष्ट्रपति मौजूदा राष्ट्रपति पर सीधा या इशारों में सवाल उठाए, ऐसा आमतौर पर नहीं होता। गौरतलब यह भी है कि रिपब्लिकन पार्टी से बुश के बाद ट्रंप ही अमरीका के राष्ट्रपति बने हैं। रुख भारत का करते हैं। डेढ़ दशक यानी 15 साल बड़ा लंबा अरसा होता है। भारतीय लोकतंत्र के हिसाब से समय सीमा को नापें तो 3 सरकारें अपना कार्यकाल पूरा कर लेती हैं। जिंदगी के नज़रिए से देखें तो इस अरसे में तमाम गर्दो गुबार जमने से यादें भी धुंधली सी पड़ जाती हैं। लेकिन साल 2002 के गुजरात दंगों के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। साबरमती एक्सप्रेस की S6 बोगी में आग लगने से करीब 59 लोगों की मौत हुई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक उसके बाद हुए दंगों में करीब 1,000 लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर मुसलमान थे। इन दंगों को लेकर बहुत सियासत हुई, अदालती कार्रवाइयों के दौर चले। इन सब के परे 15 साल बाद क्या है पीड़ितों का हाल? उनके जख्म भरे हैं या फिर टीस बाकी है? इन सवालों के साथ हमारी सहयोगी हरिता कांडपाल ने अहमदाबाद में रहने वाली दंगा पीड़ित रिहाना से बात की, जो बीते 15 साल में अपने पति को खो चुकी हैं। क्या कहना है उनका, सुनिए।
बहुत मतलब बहुत बदल गया। दोनों लड़के को स्कूल वगैरह कुछ भी नहीं पढ़ा थे, उनको मैंने काम पे जॉब करने लगा दी।
अब आप क्या चाहती हैं अपने बच्चों के लिए, किस तरह का भविष्य आप देखती हैं?
बच्चों के लिए तो बहुत मैडम चाह रहे, क्या करे अपन मजबूर है, किसी भी हालत से कुछ तो हो नहीं सकता, किसको उम्मीद नहीं होती जो अपने बच्चे को नहीं पढ़ा।
आपके बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं?
नहीं, मेरे बच्चे स्कूल नहीं जाते, 2-3 क्लास पढ़ के छोड़ दिए।
तो आप क्या चाहती हैं फिर, क्या आप लोगों को कोई मदद नहीं मिली है कि आपके बच्चे स्कूल जाएं या आप लोग कुछ काम कर सकें? सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली है?
कोई मदद नहीं मिली, मेरा पूरा घर लॉस हो गया था वहाँ पे नरोड़ा पाटिया में। हम खाली तेले कपड़े निकले थे तो 40,000 रुपये का बस खाली चेक आया हुआ था, बाकी उसके बाद कोई चीज मदद नहीं मिली, बस ये मकान मिला ये है, बाकी तो कुछ भी नहीं। हस्बैंड पिछले सर से कल हस्बैंड को भी अभी तक का कुछ मदद नहीं मिली।
जब आप अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रही हैं तो आगे के दिन कैसे कटेंगे, क्या सोच रही हैं आप?
बच्चे भी कभी कभी तो बेचारे सोचते हैं कि हमारी अम्मा पढ़ाई नहीं हमको, आज सबके बच्चे पढ़ते तो बच्चे का मन तो दुखी होता है ना, अपना भी मन दुखी होता है।
शिकवे और भी हैं। फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी अंकुर जैन, जिन्होंने इस पूरे मामले को लगातार कवर किया है। अंकुर, आपने कुछ अरसे पहले गोधरा का भी दौरा किया था, ट्रेन हादसे में जो लोग मारे गए थे, दर्द की कहानियां तो उनके परिजन के पास भी होंगी, कुछ बता सकते हैं?
बिल्कुल वात्सल्य जी, 15 साल बीत चुके हैं और उस हादसे में ज्यादातर लोग जो हैं अयोध्या से कार से आकर के लौट रहे थे और 59 लोगों की इस ट्रेन हादसे में 27 फरवरी 2002 को ट्रेन हादसे के बाद मृत्यु हुई थी। ज्यादातर परिवार वालों का जाहिर है कि उनके परिवार के खोने का दुख तो है ही, उसके साथ साथ ये मलाल भी है क्योंकि इस पूरे मामले की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें ये बात पुख्ता तौर पे निकल के नहीं आ पाई है आज भी कि ट्रेन आखिर किसने जलाई थी। इस मामले में करीबन 94 लोगों को हिरासत में लिया गया था जिसमें से कोर्ट ने 31 लोगों को कन्विक्ट भी किया था, लेकिन परिवार वालों को ज्यादातर जो फैमिली जो सर्वाइवर्स हैं या जो विक्टिम फैमिलीज हैं उनको ये मलाल जरूर है कि इस पूरे मामले की जो हकीकत है अभी भी बाहर नहीं आई है।
यानी 15 साल बाद भी उनके पास पूरी जानकारियां नहीं है, उधर दंगा पीड़ितों का दर्द अलग है।
उसके साथ ये भी है कि कई लोग ये मानते हैं कि जो ज्यादातर परिवार वाले हमने खोए हैं वो खोने का पीछे जो ये था कि वो अयोध्या में मंदिर के लिए गए थे और आज तक वो मंदिर भी नहीं बना है, तो मानते हैं कि उनके परिवार वालों का अगर श्रद्धांजलि कई विक्टिम फैमिलीज का मांगना वो है कि जब ये मंदिर बनेगा तब उन्हें ये होगा कि चलो हमारे परिवार वालों ने जो जान गवाई है वो जो मकसद था वो मकसद मंदिर से पूरा
जी। अंकुर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर उस दौर से देखा जाए, क्योंकि शिकायतें हैं, शिकवे हैं, 2002 से 2017 तक हिंदुस्तान बहुत कुछ बदल गया है, गुजरात कितना बदला है, मैं सवाल ये दंगों के परिप्रेक्ष्य में कर रहा हूँ क्योंकि शांति तो वहाँ दिखती है लेकिन समाज में जो दरार बनी थी वो मिटी है क्या?
तो 15 साल का ये जो गुजरात है 2002 के बाद का, उसको देखने के कई पहलू है। सबसे पहला पहलू है क्या वहाँ दंगे गुजरात में रुके हैं? तो गुजरात में दंगे 2002 के पहले भी होते थे और उसके बाद भी हुए हैं, लेकिन 2002 का दंगा सबसे बड़े दंगे थे, स्टेट वाइड राइट थे। तो उसके बाद उसमें अगेन दो लोग हैं कि जो एक थे जो राइट से अफेक्टेड थे, जो मुस्लिम राइट से अफेक्टेड थे, वो आज तक सेटल नहीं हो पाए हैं। कि आपको बता दें कि कई करीबन 1 लाख से करीब ज्यादा लोग अलग अलग रिलीफ कैंप्स में रह रहे थे और उसके बाद कई सारी संस्थाएं आई और उनको मकान मिले, लेकिन आज भी अधिकतर के पास अपने खुद का मकान नहीं है, उनके पास लैंड राइट्स नहीं है वहां रहने के। और जो एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया वो ये आया कि खास करके अहमदाबाद जैसे बड़े शहर में कि जो घेटोइजेशन था कि मुस्लिम कॉलोनीज जो थी वो बड़ी डिमार्क्ड हो गई, कि जो एक लोकैलिटी थी कि ये हिंदू लोकैलिटी है और ये मुस्लिम लोकैलिटी है, वो डिफरेंस बड़ा ही स्टार्क हो गया। तो इस वजह से जो रिलीफ कॉलोनीज बनी वो शहर के ऐसे विस्तारों में बनी कि जहां आज भी बेसिक सुविधाएं नहीं है।
बात करें दूसरे मतलब यानी दिक्कत अभी बरकरार है। शुक्रिया अंकुर पूरी जानकारी देने के लिए।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 49, 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 5875, 7430, 9560, 11995 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर।
बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। 14 साल बाद उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी का इरादा बना रही भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में कोई मुस्लिम प्रत्याशी नहीं उतारा है। विरोधियों ने इस पर कई बार सवाल उठाया, अब केंद्र सरकार के ही मंत्री और बीजेपी के सीनियर नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने भी कहा है कि पार्टी मुस्लिम को टिकट देती तो अच्छा होता। नकवी के इस बयान के सामने आने के बाद हमारी सहयोगी हरिता कांडपाल ने उनसे बात की तो वो सफाई की मुद्रा में दिखे।
नहीं देखिए, पहली बात तो ये टिकटों के आधार पर हमारे काम का आकलन नहीं किया जा सकता। जो लोग 100-100 टिकट भी देते रहे हैं, उन्होंने इन पिछले 70 सालों में अल्पसंख्यक समाज, पिछड़े समाज, दलित समाज, उनके जो इम्पावरमेंट के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए ईमानदारी से काम नहीं किया, और जिसका नतीजा है कि आज गरीबी रेखा के नीचे एक बड़ा वर्ग, चाहे अल्पसंख्यकों का हो, चाहे पिछड़े वर्ग का हो, चाहे दलित वर्ग का हो, वह है। तो इसलिए जो है वो हम स्टीरियोटाइप जो एक पूरा के पूरा सिस्टम रहा है कि सिर्फ टिकट दे दो और जिम्मेदारी से खत्म हो जाता है, वो ठीक नहीं है। दूसरी चीज ये कि हमारी पार्टी के लोगों का भी ये मानना है कि कोई अगर जीतने की स्थिति में कोई होता तो उसको देना चाहिए था, लेकिन वो इशू अब क्लोज हो गया, और इसलिए इशू क्लोज हम मानते हैं कि अभी जो है हम चुनाव के फेज में है, लेकिन हमारा कमिटमेंट जो है वो सभी के को साथ लेकर के और सभी को के विकास के लिए है, और उस कमिटमेंट के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं।
चुनाव प्रचार में भी जो है भाजपा के मुस्लिम नेता बिल्कुल ना के बराबर दिखे हैं।
नहीं तो और पार्टियों के कौन नेता हाँ के बराबर दिखे हैं। इसलिए देखिए, जो जहाँ जहाँ पर जो है वो जहाँ पर भी जिस लीडर की जरूरत होती है वो लीडर वहाँ जाते हैं। उसके अतिरिक्त जो हम शीर्ष नेता होते हैं कांग्रेस पार्टी में, राहुल गांधी जी हैं, वही दिखते हैं। समाजवादी पार्टी में जो है वो अखिलेश यादव है, वही दिखते हैं। बहुजन समाज पार्टी में मायावती जी हैं, वही दिखती हैं।
इसके अलावा भाजपा ने इस बार जो है राम मंदिर का मुद्दा छेड़ा है, हालांकि बहुत मुखर तरीके से नहीं छेड़ा गया है।
हम राम मंदिर के निर्माण के पक्ष में है, लेकिन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हम एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है, और हम सबको साथ लेकर चलते हैं। हमने 2014 के इलेक्शन में भी हमें समाज के सभी वर्गों का वोट मिला, और इस बार भी 2017 के विधानसभा के यूपी के इलेक्शन में भी हमें सभी समाज के हिस्सों का वोट मिल रहा है।
नकवी साहब का कहना है कि संविधान के ढांचे के तहत उनकी पार्टी राम मंदिर निर्माण के पक्ष में है। एक वक्त बीजेपी के उत्थान में राम मंदिर आंदोलन की अहम भूमिका थी, मौजूदा चुनाव के दौरान भी ये मुद्दा जब तब उठा है। इसे लेकर अयोध्या के साधु, महंत और आम लोग क्या सोचते हैं, बता रहे हैं हमारे साथी शकील अख्तर अपनी इस रिपोर्ट में।
मंदिरों और अध्यात्म का शहर अयोध्या, हर तरफ यहाँ हिंदू देवी देवताओं के मंदिर और पूजा स्थल फैले हुए हैं। पिछले 3 दशकों से अयोध्या नगरी अध्यात्म और धर्म से ज्यादा मंदिर मस्जिद विवाद के लिए जानी जाती है। शनि धाम मंदिर के महंत स्वामी हरदयाल मिश्र कहते हैं,
यहाँ पर मंदिर और मस्जिद का कोई विवाद था ही नहीं, और न विवाद है, क्योंकि यहाँ शुरू से, जैसे यहाँ सबसे बड़ा जो पीठ है हनुमानगढ़ी, वो सिराजुद्दौला का बनाया हुआ है। अब आ जाइए लक्ष्मण किला, मुसलमान ने दिया है शासक ने। यहाँ तो केवल ये जो राजनीतिक लोग हैं, इन लोगों ने जानबूझ, जो बाहरी तत्व हैं, इन लोगों ने जो विवाद जो पैदा कर दिया, यह जो है इनका असफल प्रयास रहा हिंदू मुसलमान में लड़ाने का।
सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी 35 वर्ष पूर्व राम मंदिर के आंदोलन से राजनीतिक उत्कर्ष पर पहुंची। वह बाबरी मस्जिद के स्थान पर राम मंदिर बनाने के वादे के साथ सत्ता में आई। बाबरी मस्जिद टूट चुकी है, लेकिन अभी उसके स्थान पर मंदिर नहीं बन सका है। राम मंदिर के बड़े पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास कहते हैं कि राजनीति के आने से ये विवाद जटिल हुआ।
जी हाँ, इसमें ये राजनीति न घुसी होती, केवल धर्म नीति होती, केवल पुराण और कुरान के साथ हम हिंदू मुसलमान के बीच में होता तो ये कोर्ट तक जाता ही नहीं। आपसी में बैठ करके हम लोग समझौता कर लेते, और जो उचित होता उसी रूप में हम लोग उसको समाधान कर लेते, अयोध्या में ही कर लेते।
अयोध्या के साधुओं और पुजारियों को इस बात पर गर्व है कि अयोध्या बुनियादी तौर पर हिंदुओं का शहर होने के बावजूद सभी के लिए खुला हुआ है। महंत गिरीशपति त्रिपाठी का कहना है कि सहिष्णुता अयोध्या की परंपरा है।
आप यहाँ पर देखो, यहाँ पे 6-6 जैन तीर्थंकरों की जन्मस्थली है। बुद्ध के 6-6 वर्षावास के यहाँ प्रमाण मिलते हैं। मुस्लिम इस्लामी दृष्टिकोण से भी अगर देखा जाए तो यहाँ पर उनके काफ़ी मजार और उस तरह से वो पाए जाते हैं, और बरसों से, शताब्दियों से लोग यहाँ पर शांतिपूर्ण ढंग से रह रहे हैं। अयोध्या में कभी कोई झगड़ा और फसाद नहीं हुआ, न अयोध्या के लोग कभी कोई झगड़ा फसाद किए।
मंदिर का निर्माण यद्यपि बीजेपी का एजेंडा है, लेकिन उसने इस समय चल रहे चुनाव में इसे मुद्दा नहीं बनाया है। मतदाता भी अब इस विवाद से आगे निकल चुके हैं।
राम मंदिर तो जब बनना होगा बनेगा, लेकिन हमको देश का और प्रदेश का विकास चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट निर्णय देगा वही पारित होगा।
सर मंदिर वंदिर का झमेला ये तो कोर्ट में है, इसको कोर्ट का जो फैसला देगा उसको अपनाना चाहिए। ये सब अपने अपने कुर्सी के लिए करते हैं और क्या।
राम मंदिर बाबरी मस्जिद का मुकदमा अंतिम निर्णय के लिए उच्चतम न्यायालय में है। अयोध्या हिंदुओं के देवता भगवान राम से संबंधित है। राजनीति और कानूनी जटिलताएं अपनी जगह, लेकिन यहाँ हर कोई यही चाहता है कि ये टकराव समाप्त हो और अमन और शांति से राम मंदिर निर्माण हो सके। शकील अख्तर, BBC, अयोध्या।
अब वक्त है जानने का कि दिल्ली से छपे अखबारों में क्या कुछ छपा है। दिलनवाज पाशा तैयार है अखबारों के साथ, क्या कुछ है सुर्खियां?
जी वात्सल्य, आज सबसे ज्यादा खबरों में है दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा गुरमेहर कौर। इनको लेकर काफ़ी जो विवाद सोशल मीडिया पर हुआ है और अब मुख्यधारा की मीडिया में भी आ गया है। जनसत्ता लिखता है, असहिष्णुता के खिलाफ डटी शहीद की बेटी, गुरमेहर को मिली हत्या और बलात्कार की धमकी। वहीं दूसरे अखबार हिंदुस्तान का शीर्षक है, DU विवाद में बड़े नेता कूदे और जो भारत के गृह राज्य मंत्री हैं किरण रिजिजू, उन्होंने कहा है कि गुरमेहर के दिमाग को कौन दूषित कर रहा है, सवाल किया है। और ये खबर,
मैं आपको ये बता दूं कि BBCHindi.com के पन्ने पर भी खबर है इससे जुड़ी हुई, गुरमेहर के पोस्टर के पीछे का सच क्या है।
जी
हमारे श्रोता अगर इसको जानना चाहें, जो उनका पोस्टर था उसे लेकर खड़ी थी, उसके पीछे का सच क्या है, तो BBCHindi.com का रुख कर सकते
हैं। जी जितनी इन पर चर्चा मुख्यधारा मीडिया में हो रही है उससे ज्यादा सोशल मीडिया पर हो रही है, तरह तरह की चीजें आ रही हैं। इसके अलावा एक और खबर जो आज लगभग सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है, भारत में स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया के चीफ सफदर नागौरी को और उनके 11 सहयोगियों को राष्ट्र के खिलाफ युद्ध करने के आरोप में उम्र कैद की सजा दी गई है। और यह खबर लगभग आज सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। इसके अलावा जो नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी के पूर्व चीफ इंजीनियर यादव सिंह पर कल दिल्ली की एक अदालत में पेश होने के दौरान हमला किया गया, ये व्हीलचेयर पर बैठकर आए थे, वकीलों ने इन पर हमला किया। बाद में अदालत में जज ने पूछा कि ये जेल जाने के बाद बीमार हुए हैं या पहले, तो वकील ने बताया कि जेल जाने के बाद, और जज ने कहा कि अक्सर बड़े लोग जेल जाकर बीमार हो जाते हैं। इसके अलावा द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर है जिसके मुताबिक मुंबई में एक महिला ने अपनी गर्लफ्रेंड पर मामला दर्ज कराया है और ये उन पर आरोप है कि उन्होंने साथ रहने के दौरान जो न्यूड तस्वीरें खींची थी उनको सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, तो निजता का सवाल भी जो है लोगों का काफ़ी अहम है। इसके अलावा हिंदुस्तान टाइम्स की एक खबर है जिसके मुताबिक ज़्यादातर ATM में सुरक्षा मानक पूरे नहीं हैं, यानी धोखाधड़ी जो आम लोगों से की जा सके उसकी आशंका या संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, ये हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट कहती है। कश्मीर में तैनात भारत के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अब पैलेट गन्स का मॉडिफाइड वर्जन इस्तेमाल करेंगे, उनमें कुछ तब्दीली की गई है। आपको याद होगा पहले जब
मैं एक खबर बताना चाहता हूं श्रोताओं को कि बैंक कर्मचारियों की आज हड़ताल है जिसकी घोषणा की गई है, और नोटबंदी के दौरान जो अतिरिक्त काम करने के लिए उन्हें मुआवजा देने की मांग के साथ उन्होंने ये हड़ताल की कॉल की है। तो बहुत शुक्रिया दिलनवाज इस विस्तृत समीक्षा के लिए अखबारों की।
खबर सच है अगर BBC पर है।
और जैसा हमने शुरुआत में आपसे बात की थी, एक खास रिपोर्ट जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं कि भारत में पहली बार साइन लैंग्वेज डिक्शनरी बनाई जा रही है। ऐसे लोग जो सुन या बोल नहीं सकते उनके हाथों, चेहरे और शरीर के हाव भाव से बातचीत की भाषा को साइन लैंग्वेज कहते हैं। इस डिक्शनरी में साइन लैंग्वेज से अंग्रेजी और हिंदी भाषा में अनुवाद होगा। कैसे तैयार होगी ये डिक्शनरी, बता रही हैं दिव्या आर्य अपनी इस विशेष रिपोर्ट में।
डेफ लोग नेचुरली वो साइन लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते हैं। साइन लैंग्वेज इज़ अ नेचुरल लैंग्वेज ऑफ इट्स ओन, उसके अपने ग्रामर हैं, अपनी स्ट्रक्चर है, अपने रूल्स हैं, अपना वोकैबुलरी है।
साइन लैंग्वेज महज इशारे नहीं होते बल्कि किसी अन्य भाषा की ही तरह इसका अपना व्याकरण और नियम है, लेकिन इसमें बातचीत करने वाले लोगों की अंग्रेजी और हिंदी जैसी भाषाओं पर पकड़ कमजोर होती है क्योंकि उन्होंने वो कभी बोली या सुनी नहीं है। सामाजिक कल्याण मंत्रालय के तहत साल 2016 में बनाए गए इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर में साइन लैंग्वेज की असिस्टेंट प्रोफेसर अंदेशा मंगला समझाती हैं।
बहुत डिफिकल्ट होता है उस इंग्लिश का ग्रामर सीखना या फिर हिंदी का ग्रामर सीखना, उसकी वोकैबुलरी सीखना, क्योंकि वो अपनी नेचुरल कम्युनिकेशन में साइन लैंग्वेज यूज़ करते हैं। एंड साइन लैंग्वेज का कोई स्क्रिप्ट नहीं है, इट्स नॉट वो लिखी नहीं जाती है। सो वो जो साइन लैंग्वेज उनके जो फर्स्ट लैंग्वेज है उससे जो सेकेंड लैंग्वेज जो हम राइटिंग कर रहे हैं उधर वो ब्रिज बनाना होता है।
इस साइन लैंग्वेज डिक्शनरी में सिर्फ मूक बधिर लोगों के साइंस का अनुवाद ही नहीं होगा बल्कि उसका भाषा ज्ञान भी दिया जाएगा। इस्लाम उल हक पैदाइश से मूक बधिर हैं। जब मैं उनसे मिली तो उनकी सहयोगी खुशबू दुआ ने उनके साइंस इंटरप्रेट कर मुझे डिक्शनरी के बारे में बताया।
इस्लाम जी साइंस से बता रहे हैं कि फूड इज गुड, तो जब हम साइन में उसको यूज करते हैं तो फूड गुड दो साइन आते हैं, दिस इज अ कंप्लीट सेंटेंस। और जब हम उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो द फूड इज गुड, तो जो द है और जो इज है वो साइन हम प्रॉपर तो नहीं कर रहे हैं, फूड गुड दो साइन आ रहे हैं पर वो कंप्लीट सेंटेंस है।
यानी आप ये कह रही हैं कि आपको अगर साइन लैंग्वेज में ये बताना हो कि फूड इज गुड यानी कि खाना अच्छा है तो आपको सिर्फ दो साइन बनाने होंगे, एक फूड का और एक गुड का। पर अगर आपको उसको भाषा में लिखना है अंग्रेजी भाषा में तो द फूड इज गुड यानी उसमें द और इज भी आएगा, और साइन लैंग्वेज डिक्शनरी से ये ग्रामर समझने में आसानी होगी जो साइंस की लैंग्वेज में जरूरी है ही नहीं। आप सोचेंगे कि क्या दुनिया में पहले से मौजूद साइन लैंग्वेज डिक्शनरी का इस्तेमाल भारत में नहीं हो सकता? हो तो सकता है, पर एक ही शब्द के साइंस देश की संस्कृति और स्थानीय परंपराओं के मुताबिक अलग हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर शादी का साइन अमरीकी साइन लैंग्वेज में अंगूठी पहनाने से जुड़ा है, जबकि इंडियन साइन लैंग्वेज में ये हथेलियों को एक के ऊपर एक रखकर दिखाया जाता है। सामाजिक कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव अवनीश कुमार अवस्थी बताते हैं,
देश में अलग अलग जगहों पर साउथ में यानी दक्षिण में, नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व में, कुछ जगहों पर नॉर्थ में अलग अलग मेथड्स हैं साइन लैंग्वेज पढ़ाने के। तो पहली चीज़ तो हमको डिक्शनरी एक बनानी पड़ेगी जिससे कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ साइन लैंग्वेज हो जाए, यानी एक ही मानक पर साइन लैंग्वेज पूरे देश में जो है कम से कम पढ़ाया जाए।
उदाहरण के तौर पर दक्षिण भारत में मुट्ठी बंद कर दोनों बाहों को एक के ऊपर एक रखा जाए तो उसे शादी का साइन माना जाता है, पर इसी साइन को उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में जेल का साइन माना जाता है। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग विकलांग हैं, जिनमें से 50 लाख को सुनाई नहीं देता है या उनकी सुनने की शक्ति कमजोर है। साइन लैंग्वेज इनके लिए संचार का एकमात्र तरीका होता है। भारत में करीब 700 ऐसे स्कूल हैं जहां इसकी मदद से पढ़ाई की जा रही है, पर ये नाकाफी है और इनके बारे में भी जानकारी बहुत कम है। अवनीश कुमार अवस्थी बताते हैं,
आज हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा में डेफ लोगों की संख्या बहुत कम है, और जब वो ऊपर पढ़कर नहीं आ पाते हैं हायर एजुकेशन में जो है उनको स्थान नहीं मिलता है, तो फिर नौकरियों में भी उनका स्थान नहीं होता। इस कारण से नौकरियों में अगर देखेंगे 1% अगर फिजिकली इम्पेयर्ड के लिए है, 1% हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए, 1% विजुअल इम्पेयर्ड के लिए है, तो इसमें हियरिंग इम्पेयर्ड के पद काफ़ी हद तक खाली इसलिए है क्योंकि क्वालिफाइड लोग ही अवेलेबल नहीं है।
मंत्रालय को उम्मीद है कि साइन लैंग्वेज डिक्शनरी मूक बधिर लोगों को रोजगार, शिक्षा, औपचारिक स्तर पर बातचीत, चिट्ठी लिखने वगैरह में मददगार साबित होगी और साथ ही अनुवादकों के लिए भी उपयोगी होगी। ये डिक्शनरी छपी हुई किताब के साथ साथ वेबसाइट पर वीडियोस के साथ भी उपलब्ध होगी। दिव्या आर्य, BBC, दिल्ली।
और आपको बता दें कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान शांता रंगास्वामी को BCCI ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने का फैसला किया है। वो ये पुरस्कार हासिल करने वाली पहली महिला क्रिकेटर हैं। आप उनके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो रुक कर सकते हैं bbchindi.com का। कार्यक्रम खत्म करने के पहले एक बार फिर सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रक्षा बजट में ऐतिहासिक बढ़ोतरी करने का वादा किया है। व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने बताया है कि ट्रंप साल 2018 के रक्षा बजट में $54 अरब की बढ़ोतरी करना चाहते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि बैक्टीरिया से निपटने के लिए नए एंटीबायोटिक विकसित करने की आपात जरूरत है। जर्मनी की चांसलर अंगेला मेर्केल ने तुर्की में जर्मन तुर्क पत्रकार को गिरफ्तार किए जाने को निराशाजनक कहा है। BBC समाचार।
इसी के साथ ये सबाब यहीं समाप्त होती है। आपसे हमारी अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे दिनभर में होगी। बदलती खबरों के लिए तब तक आपके साथ है हमारी मल्टीमीडिया वेबसाइट bbchindi.com। इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया दीपक जसरोटिया ने। सभी साथियों के साथ वात्सल्य राय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।